आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारल के समय सार कलश 20 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराय और क्या चकार चित्त भावाय भावाय सर्वभावान
कथमपि समुपात तृत्वमप्येकताया अपदतमिदमात्मा ज्योतिरुद्गच्छदच्छम् सततमनुभवामोऽनन्त चैतन्य चिन्नम्। कहते चैतन्य अनंत चैतन्य चिन्नम सततम अनुभवामः। अनंत है, अनंत चैतन्य है चिन्ह जिसका, ऐसे इस भगवान आत्मा का मैं निरंतर अनुभव करता हूँ। आचार्य देव कहते मैं निरंतर अनुभव करता हूँ। ये वो अनुभूति के काल की बात नहीं है, ये तो लिखते वक्त लिख रहे ना। तो ये कहना चाहते हैं कि वो आबाल गोपाल को सबको दिखाई देता है ना भगवान आत्मा, और सारे जगत को बस इतना ज्ञान होने में यही मैं हूँ। मेरे कहने का मतलब है उनका कि मेरे ज्ञान में निरंतर उस त्रिकाली भगवान आत्मा में अहमपना स्थापित है, और मेरा ज्ञान निरंतर ये जान रहा है कि यही मैं हूँ। इसका नाम है सततम अनुभवामः। और ऐसा समझ लो कि किसी की तिजोरी में करोड़ रुपया हूँ तो वो 24 घंटा कोई उसके विकल्प में नहीं रहता है, ना उनको गिनता ही रहता है, ना भी ऐसा सोचता ही रहता है कि मैं करोड़पति हूँ। फिर भी उसके होने की श्रद्धा जो उसके अंदर विद्यमान रहती है, और वो जो ज्ञान अंदर परिणति में बना रहता है कि ये मेरे इतने का मैं मालिक हूँ, तो उसकी जोश और होश, उसकी ताकत निरंतर उसमें उसको बनी रहती है। ऐसे ही जब भगवान आत्मा में जिसका अहम होता है तो उसको निरंतर उसका गौरव और उसकी उसकी शक्ति, उसकी ताकत अंदर में निरंतर बनी रहती है। अभी उसके रुपये विकल्प में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, अभी तिजोरी बैंक में पड़े हैं, फिर भी उसकी जेब में से 100 का नोट ऐसा गिर के एकदम आग में गिर जाए और जल जाए, हंसने लगता है। और अभी गरीब आदमी हो, 400 महीने की तनख्वाह मिलती हो, और उसका वो 100 का नोट जल जाए तो उसके कैसा पेट का पानी भी ऊपर आ जाता है। तो अभी तो वो जो उसको अंदर वो हंस के रह गया, तो ये उसके अंदर जो करोड़पति पने की श्रद्धा और ज्ञान निरंतर विद्यमान है उपयोग में, कि उसकी शक्ति थी, यानी इतना नुकसान उसको झेलने की जो उसके अंदर शक्ति बनी रही वो उसकी शक्ति थी। ऐसे ही भगवान आत्मा में त्रिकाली ध्रुव में जिसका अहमपना विद्यमान रहता है, उसको पर्याय में थोड़ी बहुत क्षति हो जाती है तो उस पर्याय की क्षति को वो हंस के टाल देता है। क्या तो क्या है, ऐसे 100 की गद्दियां सैकड़ों पड़ी है मेरी, ये गया तो गया, ऐसा उसे ख्याल में रहता। ऐसे मैं तो मेरे स्वभाव में तो अनंत शक्ति का भंडार है, इस पर्याय में थोड़ी क्षति हुई तो हुई, तो उसने क्या। तो ऐसा ही प्रधानमंत्री है, उसकी कितनी आलोचना होती है अखबारों में रोजीना, तो भी वो कुछ नहीं असर पड़ता है। क्यों, कि अंदर में मैं प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा जो शक्ति और जोम पड़ा रहता है तो उसे सारे अपने एक अखबार में एक लेन अपने विरुद्ध आ जाए तो अपन घबराने लगे और ये होने लगे, बदनामी हो गई, ये हो गई, कितने सारे लोग कितने बेश्रम हो जाते हैं, उसने उसकी हत्या कर दी, उसने वही कर दी, उल्टी सीधी सब शक्ति रहती है इनकी, सैकड़ों हजारों पतियों में पड़ी रहती है, उनकी गाड़ी वैसी बेश्रमता चलती रहती है, उनको असर ही नहीं पड़ता। अपन को कोई एक आदमी ये कह दे रहे कि साहब इनने वहाँ चाय पीते हमने देखा था पंडित जी को, तो इतना गुस्सा था कि मैं सारा 10 साल से चाय नहीं पी, जब से आरोप लगा रहा है तो होटल पर चाय पीते दिखाया था, और इतने में तुम गुलबिलाने लगते कि नहीं, गुलबिलाने लगते कि नहीं। एक जरा सी बात आलोचना बर्दा ऐसे नहीं करो, कोई तत्व ज्ञानी हो गए, लेकिन अंदर में उनको एक शक्ति और सामर्थ्य का जो भरोसा पड़ा है कि ऐसी ऐसी बातों से मेरा कुछ नहीं होता है, तब तो उससे उसके अंदर घबराहट नहीं आती। ऐसे ही लोग कहते हैं सततम अहम अनुभवामः, मैं निरंतर इस बात का अनुभव करता हूँ कि विकल्प के काल में भी कि मैं चैतन्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, इस समय दर्शन है। अनुभूति के अनुभूति तो बहुत अच्छी चीज है, उससे बढ़िया तो कोई दूसरी चीज ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि अनुभूति के काल में ही धर्म हो रहा है, बाकी के काल में अधर्म ही अधर्म हो रहा है। बाकी के काल में श्रद्धा और ज्ञान का जो वो अंदर प्रसाद पड़ा है अनंत भी उसमें लग रहा है, वो निरंतर शुद्धि की वृद्धि करने में कारण बनता है। इसी लक्ष्य लगा है ज्ञानवंत के भोग नजर आ रही है। अनुभूति के काल में तो अनुभूत सर्वोत्कृष्ट दशा है ही, ध्यान का काल तो सर्वोत्कृष्ट दशा है ही। ये मुनिराज जंगल में नंगे दिगंबर रहते हैं, ऐसे शेर के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं और न उन्हें किसी का भी भय नहीं रहता है निरंतर। तो ये परिणति आत्मा भी परिणति का बल थोड़ी, ऐसा अनुभूति का बल थोड़ी, ऐसा अनुभूति में कहा है। लेकिन जब उपयोग बाहर है तब भी उनका अनंत वीर यहाँ स्वरायमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो श्रद्धा और ज्ञान के बल पर। मुझको करीब 2-3 साल से एक बात का बहुत विकल्प रहता है कि लोग अनुभूति को समर्थन समझते हैं। कई दिनों मैं कह चुका हूँ आप लोगों से भी, तो उनका भेद ज्ञान कराने के लिए मैं आपको बात कहता हूँ। अनुभूति की महिमा कम करने के लिए ये बात नहीं है, समझ में आया ना? क्योंकि सम्यक दर्शन की छाया समर्थन किसी जीव को है तो वो त्रिकाल उपस्थित रहेगा और उसका फल त्रिकाल एक सा होना चाहिए। अनुभूति के काल में भी वैसे ही होना चाहिए और अनुभूति का काल जब नहीं है तब भी वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि छायक है ना, तो वो कोई कमजोर थोड़ी समय दर्शन है। तो समय दर्शन का फल अनुभूति के काल में ही अच्छा क्यों मिले, बाद में क्यों नहीं मिले? तो जो अनुभूति के काल में विशिष्ट लाभ होता है वो तो चारित्र का है। चारित्र का माने आत्मा की स्थिरता का नाम चारित्र है ना, तो आत्मा अधिक काल में अनुभूति में संपन्न रहा तो वो स्थिरता का गुण है। वो श्रद्धा का गुण तो उपयोग बाहर के काल में भी वैसा ही है, अनुभूति के काल में मैं तो कहता हूँ सिद्धों में भी श्रद्धा से जो ही लाभ होता है वो ही लाभ सिद्धों में भी है जो यहाँ सम्मान दृष्टि को होता है। मैं उल्टा कह रहा हूँ, जो सिद्धों के होता है वो सम्मान दृष्टि को होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है कई जगह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिद्ध में भी सम्मान दर्शन का तो हमको यही लाभ मिलेगा जो हमें यहाँ मिल रहा है। बाकी तो फिर जो और अनंत सुख है और चारित्र की निर्मलता का है वो फर्क। तो जो सम्यक दर्शन का सुख, सम्यक दर्शन से जो सुख गुण में अतीन्द्रिय आनंद की आकार किरण फूटी है उसका हमको नाप निकालना चाहिए। तो अनुभूति के काल से कहेंगे चारित्र का मिश्रण हो गया उसमें, तो अनुभूति के काल में नहीं बल्कि दौलत राम जी के शब्द में कहें ऊपर नारक के दुख भोगत और अंतर समरस घटा रहती। तो वो अंतर समरस घटागटी ऊपर के नरक के अवस्था में भी जैसा सुख होता है वैसा सुख समृष्टि को होता है। दुनिया के पागल हो गए तो नरक जैसा सुख होता है, नरक जैसा दुख होता है। लेकिन मेरे कहने का ऐसा समझे ना, वो सुख श्रद्धा का सुख नारकी को भी विद्यमान रहता है। कहने का ऐसा क्या कि प्रतिकूल संयोग में भी वो सुख तो खत्म नहीं होता है। तो हमारे तो प्रतिकूल संयोग में तो हमको अपने को सुखी नहीं मानते हैं, अनुकूल संयोग में हम अपने को सुखी मानते हैं। तो हमारा तो अनुकूलों के संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता से ही सारा नाप है। यदि समय सार की अजीब अधिकार की गाथाओं के हिसाब से बात करें तो हम ये मानेंगे कि हमने वेदनी कर्म को आत्मा मान रखा है। तो वेदनी कर्म की साता वेदनी का उदय हो तो हमें आत्मा की तरक्की दिखती है और असाता वेदनी का उदय हो तो हमें आत्मा की तनकजली दिखती है। मतलब वेदनी कर्म कोई हो गया ना, तो हमारा आत्मा वेदनी कर्म को कोई हमारे 8 प्रकार के लिखे ना, कोई कर्म को आत्मा मानता है, कोई कर्म के अनुभव को आत्मा मानता है, तो हम उस स्थिति में आ गए। तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का उदय हमारे विद्यमान हो और सम्मदसम की उपस्थिति में हो सकता है। अब इससे ज्यादा वर्ग क्या कहें, नरक के दुख भोग है। असाता वेदनी का तो उदय ऐसा है और सम्मदसन का सुख वहां विद्यमान है और स्वर्ग में भी वही सुख विद्यमान है। जिन सुखों का वर्णन स्वर्गों का किया जाता है वो सम्मदसन का सुख थोड़ी है। इसलिए तो लिख दिया जो विमान बासी हु थाए और सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। मन सम्यक दर्शन का होने वाला सुख कोई अलग टाइप का है और चारित्र के मोह के अभाव में होने वाला अलग टाइप का है, उसका भेद विज्ञान हमारे ख्याल में होगा। इसके अंदाज लगाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रात के 2 बजे हूँ पर आपको यहाँ कोई एक गांठ सी दिखे और उसमें थोड़ा दर्द हो तो आप ऐसा हाथ से देखें कि गांठ है, इसमें दर्द हो रहा है, कहीं ये कैंसर की गांठ ना हो, ऐसा विकल्प आपको चल जाए। ख्याल में है ना? सर देखो उसका दर्द होता है। अब देखिए उसकी एक तो उस गांठ की पीड़ा और ये गांठ कैंसर की तो नहीं है इस बात की पीड़ा है, 2 अलग अलग टाइप की पीड़ा है। तो जो कैंसर की शंका से जो दुख हुआ वो है श्रद्धा जन्य दुख, और जो तकलीफ हो रही है वो समझ लीजिए कि असाता बिरनी का दुख है। अब यदि सुबह डॉक्टर को दिखाएं और वो कह दे कि बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, ये गांठ कैंसर की नहीं है, पर इसको तुम निकलवा दोगे तो दोबारा आ जाएगी और इससे कुछ कोई तुम्हारे शरीर को हानि नहीं है, तुम मरने वाले नहीं, कोई खतरा नहीं, नो डेंजर। लेकिन ये गांठ है कि साहब इसमें थोड़ी सी दर्द तो रहता है, कि दर्द तो रहेगा, उसकी कोई फिक्र मत करो। तो बिल्कुल अपन को कितना दुख दूर हो जाता है, बोलो अनंत दुख दूर हो जाता है कि नहीं हो जाता? वो अनंत में भाग रह जाता है। अब समझ लो तुम श्रद्धा का दुख कितना होता है और शायद का कितना होता है, इतना फर्क है इसमें। समझ कहेंगे सारी गांठ को आप हम निकाल के फेंक देंगे, जैसा इसमें निकालने से कोई नुकसान तो क्या नुकसान, अरे दो मिनट में थोड़ा इंजेक्शन लगाएंगे, शून्य करेंगे, काट पीट के फेंक देंगे, अपने घर चले जाना, कुछ नहीं होगा। तो उस गांठ को कटवा के फुकवा देने से आपको बिल्कुल कोई तकलीफ, थोड़ी पीड़ा होती है तो वो शून्य कर देते हैं और थोड़ी आधा दिन गोली खाने पड़ती है, लेकिन आपके माथे पर कोई वो नहीं आती है स्थल। ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों को पूरी देह की गांठ निकाल के काट के फेंक दी जाए, ऐसा प्रसंग बने तो अभी उनको वैसे ही भाव रहता है, लेकिन इसमें को उस गांठ में कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल दिया नाखून निकाल दिया, ये गांठ निकाल दी, पैर में चाय पड़ जाती है, चाय निकाल काट के फेंक दी, समझे ना? ऐसे सारा से भी बदलेगा क्या, क्योंकि जैसे तुम्हारी उस गांठ में अहम बुद्धि नहीं है, वो देह नहीं है, देह का अंग तो देह में ही पैदा हुआ है पर ये देह का दोष है, इसलिए उसमें हे बुद्धि बनी है, ऐसे उनके देह में पर बुद्धि हे बुद्धि बनी रहती है, इसलिए पूरी देह निकल जाए तो दूसरी देह आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल कोई आतुरता का चित्र नहीं होती है। तो नहीं, हम तो समझ ऋषियों को भी रोते देखा है, क्या वो तो वो जो गांठ है ना गांठ कह दे कि वो इसमें कोई डेंजर नहीं है और फिर आपको कोई चिंता नहीं है, लेकिन उस दांत उसको डॉक्टर दवा के देखे मस्के समझ गए ना आप, तो आपकी आंख में आंसू आ जाए, बता रहे कहने नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहुंच रहे चुपता हो गए कोई बात, क्योंकि श्रद्धा का यानी पीड़ा तो हो सकती है ना, पीड़ा होना अलग बात और दुख होना अलग बात है। ऐसे संबंध इसी को भी देह छूटेगी कटेगी पिटेगी तो पीड़ा तो हो सकती है ना, पीड़ा हो सकती है, आंख में आंसू भी आ सकती है, मुंह से चीतकार भी निकल सकती है, हाय राम भी निकल सकता है, बुखार है चढ़ जाए तो दांत भी कभी आ सकती है कि नहीं आ सकती है, चैतन्य से जाए तो शरीर भी अकड़ सकता है, चेहरे पे पीड़ा का निशान भी हो सकता है, उससे क्या होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप समझ लो कि आप समझते इससे कोई नुकसान नहीं है, फिर भी मुझे दर्द तो होता भी है ना, इंजेक्शन से ताकत का इंजेक्शन लग रहा तो ताकत आएगी शरीर में, नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है, अपने जानते सुई ऐसी लगे निकल जाएंगे, ऐसा कर देंगे कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी जब जो सुई घुसती है तो दर्द तो होता ही है कि नहीं होता, श्रद्धा ठीक होने के बाद में आकुलता नहीं होती है लेकिन दर्द होता कि नहीं होता, तो संबंध इसी धर्मात्मा को भी वैसा हो ही सकता है, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। ऐसी परिस्थिति में इस श्रद्धा का मैं जो इतनी बातें आपसे कह रहा हूँ ये अंदाज लगवाने के लिए कह रहा हूँ कि श्रद्धा जन्य जो दुख है, श्रद्धा के दोष से जो दुख होता है वो अलग टाइप का होता है और सर्प के दोष से जो दुख होता है वो अलग टाइप का होता है, और श्रद्धा जन्य दोष का जो दुख है वो अनंत गुणा है। वास्तव में शास्त्रीय भाषा में श्रद्धा के दोष को अपराध कहते हैं और चारित्र के दोष को दोष कहते हैं, दोष और अपराध में फर्क होता है, गलती और अपराध, दोष माने गलती, तो क्या फर्क है गलती में और दोष में, कि गलती तो ये है कि भाई अभी प्रचरण में आ रहे थे और कोई बिल्कुल बुद्धिपूर्वक रहने का विकल्प नहीं था, आते आते 5 मिनट लेट हो गए, घड़ी लेट हो गई, हमने नहीं जान पाया, हमारे उपयोग में कोई भ्रष्टता हो गई, हमने उसी बात भूल हो गई, ये तो दोष हो जाता है, दोष का दंड दे करके उससे क्षमा हो जाता है, दंड दिए बिना तो दोष भी क्षमा नहीं होता है, प्रायश्चित से दोष निवारण हो जाता है, अपराध प्रायश्चित से निवारण नहीं होता, अपराध दंड से निवारण होता है, दोष के लिए प्रायश्चित पर्याप्त है और अपराध के लिए दंड आवश्यक है। और इसको और स्पष्ट करूं तो जो भारतीय कानून में 2 तरह के अपराध होते हैं, एक के जिनमें जमानत नहीं होती, जिनमें समझौता नहीं होता, और एक वो के जिनमें जमानत होती है समझौता होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने मुझे 10,000 रुपये दिए और फिर मैंने आपको वापस नहीं दिए तो आपने दावा कर दिया, तो दावा करने के लिए मुझे कोई जेल में नहीं डाला जाएगा, मुझे कोई संबंध आप ले लीजिए और आके बस अदालत में बात करिए, डिग्री भी हो जाए तो भी कुछ नहीं, मतलब जो उस पर कोई अपराध नहीं है, दोष है। और फिर वो ये भी कहेगा मुझे कि तुम आपस में समझौता कर लो। क्या समझौता कर लोगे? वो मुझे सिर्फ खुद कहेगा इसके पास है ही नहीं सेठ जी, क्या ले लोगे, जो कुछ भी 1000-2000 दे ले लगा के निपटा लो। ऐसा मुझे सेठ भी समझा क्यों? अरे वो कहते सेठ जी 2000 में निपटाने होता, ले लो मैं दे देता हूँ, तुम जैसे करो से करो। अभी दोनों जाकर कह दे दें कैसा हमारा समझौता हो गया, क्या हुआ जिसने 1000 रुपए दिया हमने ले लिया, झगड़ा खत्म नहीं करो, मैंने कहा ठीक है जाओ जाओ जाओ। और कोई किसी को पीट देवे, जान से मार देवे, तो उसमें फिर समझौता नहीं होगा। हमने समझौता कर लिया कि इनके घर वालों को 2000 लाख रुपया दे दिए, तो वो मजिस्ट्रेट नहीं मानेंगे, वो हत्या की सजा आपको मिलेगी ही, समझे ना। तो अपराध तो श्रद्धा अपराध है, श्रद्धा माफ नहीं होती, श्रद्धा में समझौता नहीं, शायद में सब होता है, गलती है हमारे बस की नहीं है, हमसे संभव नहीं है, हमारे नहीं होता है, नहीं होता तब ये नहीं करो। लेकिन वो ऐसा नहीं चलेगा कि मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। अभी ये कहेंगे देखो साहब, सब विद्यार्थियों को प्रवचन में उपस्थित होना और पूजन में उपस्थित होना जरूरी है, कैसा मैं नहीं उपस्थित हो सकता, तो क्या बात करता है, कमीन में मैं तो नहीं आ सकता, मेरे को मैं नहीं, तो फिर तुम विद्यालय में भी नहीं रह सकते, कमी साहब कम रह सकता, मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो नहीं आऊंगा, तो उसे निकलना ही पड़ेगा। अरे वो कहेगा नहीं साहब, मुझे 2 दिन की मेरी तकलीफ है, आप छुट्टी दे दो, तो आने से मुझे इनकार थोड़ी है, और आप तो मेरे हित की बात कहते हो, मुझे आनी चाहिए। मैंने वो सिद्धांत था उस बात को स्वीकार करे कि मेरी ड्यूटी है, मुझे उपस्थित होनी चाहिए, मेरी कोई कमजोरी है, मुझे को माफ कर दो, गलती हो गई, भविष्य में नहीं करूंगा, 2 दिन की छुट्टी दे दो तो चले। लेकिन वो सिद्धांत तो ही स्वीकार, तो इसलिए ये श्रद्धा तो सिद्धांत स्वीकार करने की बात है ना, एक दिन दूसरे दिन का करता नहीं है। यह बात हम सिद्धांत स्वीकार कर लें और फिर कहकर साहब मुझे कोई तो करने का विकल्प कीजिए, आ जाता है क्या करें, करने का विकल्प मुझे आ जाता है, इसलिए मैं क्या करूं, फिर कोई दिक्कत नहीं, वो चारित्र का दोष है। लेकिन नहीं करता हूं, कर सकता नहीं हूं, ये तो तू मानता है कि नहीं मानता है, ये श्रद्धा का दोष है। तो श्रद्धा में पुत्र काली ध्रुव जो भगवान आत्मा है, कोई मैं हूं ऐसे ज्ञान की परिणति में विद्यमान रहे और श्रद्धा में विद्यमान रहे, उसको यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि सततम अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्हम, अनंत चैतन्य चिन्ह से चिन्हित जो भगवान आत्मा है, मैं वही हूँ ऐसा मैं निरंतर अनुभव कर, मेरा अपनापन 24 घंटा उसमें ही विद्यमान है। काहे कोई जबरदस्ती घोषणा कर रहा है कि हम सम्मदृष्टि हैं? आज के जमाने में होते तुम अपने को सम्मदृष्टि कहोगे तो फिर हम तुम्हारी छुट्टी और कर देंगे। तो आचार्य ये कैसा क्यों कह रहे हैं कि मैं निरंतर सतत भगवान आत्मा का अनुभव करता हूँ? अरे वे तो ये कह रहे हैं कि अपना हम सम्यक दृष्टि हैं, ये तुम्हें बताने के कर्क का गौरव हमको चाहिए, उसका मान हमको चाहिए, इसके लिए हम नहीं कह रहे हैं। वास्तव में ये प्रश्न भी वहीं खड़ा होता है कि जब कोई आदमी ऐसा मान चाहने के लिए कहता है, वो तो उनके सहज फ्लो में आया है, और वास्तव में तो वो ये कह रहे हैं कि तुम अनुभव करो। लोक में भी ऐसा होता है ना कि हमारे दस में दर्द होता है तो हम दस ही ढूंढ लेते हैं, तो जब हम करेंगे हमारे सर में बहुत दर्द है तो हमारे में रोज हम सही ढूंढ लेते हैं, ऐसा जब तुम कहते हो दस्कार तो तुम अपने सर दर्द बताना तुम्हारा उद्देश्य है, बल्कि एक तुम चाहो तो एक सही ढूंढ ले लो, लेकिन ये नहीं कहते तुम ले लो हम तो अपनी बता देते हैं, ऐसी पद्धति है और कुछ नहीं। वास्तव में ये दूसरे को प्रेरणा देने की पद्धति है, ये कोई अपने को ज्ञानी धर्मात्मा घोषित करके कोई मान पोषण की पद्धति नहीं है। सततम अनुभवामा अनंत चैतन्य चिन्हम, मैं तो अनंत चैतन्य चिन्ह जो भगवान आत्मा है, अनंत चैतन्य का मतलब क्या कि जिस चित्त स्वभाव का कभी अंत नहीं होता, अनंत माने केवल ज्ञान, क्यों अनंत माने केवल ज्ञान नहीं, अनंत माने पर्याय ज्ञान, पर्याय ज्ञान समझते हो, बमर साहब ने पढ़ाया होगा ना कल्पना बहन ने, पर्याय नाम पर्याय, पर्याय समास नाम का ज्ञान होता है ना, सर ने वो दिया कि सबसे थोड़ा जो कम से कम ज्ञान रहता है जो निरावरण होता है, जिस पर कोई आवरण नहीं होता है, मैंने एक इंद्रिय से और ही अल्प से अल्प ज्ञान, जितना कम से कम ज्ञान हो सकता है, सबसे छोटा जो ज्ञान होता है उसको बोलते पर्याय ज्ञान। तो पर्याय ज्ञान वो अनंत ज्ञान है, क्यों है बोलो महावीर मालूम, क्योंकि उसका अंत नहीं होता, क्योंकि उस पर आवरण नहीं होता, वो हमेशा निरावरण रहता है, और ये केवल ज्ञान का अभी है ही नहीं, मन और पर्याय वाला जो ज्ञान है वो अनंत नहीं है, लेकिन वो अत्यल्प ज्ञान है वो अनंत है, माने वो चैतन्य का चिन्ह का कभी अंत नहीं होता। अंत हो जाए तो चेतन को पहचाना कैसे जाए चैतन्य के चिन्ह से, वो भी लगाओ तो उसे भी मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी निगोदिया में भी अनंत चैतन्य चिन्ह है, मतलब माने भगवान आत्मा का जो चैतन्य, भगवान आत्मा का चिन्ह जो चैतन्य है उसका कभी अंत माने पूर्णता लोप नहीं होता, समझे ना। ये दिया है इसकी लौ खूब इतनी बड़ी रहे, इतनी टिमटिमाती रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दफे बुझ गई तो फिर कितने तेल घी डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जलने वाली नहीं है, और वो जलती रही तो छोटी से बड़ी हो जाएगी। ऐसा पर्याय नाम का ज्ञान जलता रहता है तो मन पर्याय ज्ञान तक सूक्ष्म ज्ञान बढ़ जाता है और केवल ज्ञान भी रहता है, और वहां खत्म हो जाए चैतन्य का चिन्ह ही खत्म हो जाए तो बात खत्म। अनंत ज्ञान तो है ही, ज्ञान ज्ञान का लक्षण अनंत है, गुण ज्ञान गुण भी अनंत है, फिर अनंत जो चैतन्य का चिन्ह है ऐसा जो मेरा त्रिकाली जो भगवान आत्मा है उसको मैं निरंतर अनुभव करता हूँ, इस बात का अनुभव करता हूँ कि यही मैं हूँ। और क्या है, कथम अपि समुपात्ता त्रितत्वम एकताया अपतद इदम आत्मज्योति ऋतुगच्छम, यह जो आत्मज्योति है जो अत्यंत प्रकाशमान है जो अपने स्वभाव से कभी पतित नहीं हुई है और जो तीन पने को प्राप्त होकर के भी जिसने एक पना को नहीं छोड़ा है, ऊपर है ना, कथमपि समुपात त्रित्वम, कैसे भी करके तीन पने को प्राप्त हुई है पर एकतायाम अपतत, जो एकता से पतित नहीं हुई है, जिसका एकत्व खंडित नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीन भावों को प्राप्त होने पर भी जिसका एकत्व अपतित रहा है कभी गिरा नहीं है, ऐसी प्रकाशमान जो आत्मा की ज्योति है जो अत्यंत अच्छी है, अच्छम अच्छम शब्द का प्रयोग किया है ना, मैं उसका निरंतर अनुभव करता हूं। क्यों करते हो भैया, न खलु न खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि, क्योंकि साध्य की सिद्धि का कोई दूसरा उपाय नहीं है, मैं उसको अनुभव करता हूं का मतलब यही मैं हूं, ये मानता हूं, ये जानता हूं, ध्यान करता हूं, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं। न खलु न खलु, ये तो खलु ही बहुत ताकतवर शब्द है, निश्चय का वाचक है ना, और हमेशा दृढ़ता को प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ये तो दो दफे उन्होंने प्रयोग किया और दो दफे नहीं किया है, बार बार तो कितने बार हुआ, दो बार, एक बार तो दूसरा बार तो दो बार हुआ ना, तो बार बार का दो बार होता है, न खलू का मतलब अगर दो बार नहीं, कोई कोई है ही नहीं, एक दफे दो दफे हजार दफे लाख दफे जो भी कहलाना हो कहलवा लो, साध्य की सिद्धि का कोई दूसरा उपाय लोक में नहीं है। बहु भाई की भाषा में आधे मानो काले मानो चाहे अनंत काल बाद मानो, इन्हें मानना तो यही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये इसमें है, न खलू ये समाज अन्यथा साध्य सिद्धि, इसलिए वो 16वीं 17वीं 18वीं तीनवीं गाथाओं के बाद भगवान तीनों गाथाओं में उदाहरण देकर ये सिद्ध किया कि दर्शन ज्ञान का सेवन करो। 16वीं में गाथा ना, गाथा में कहा था ना, दंशन गाणी चल प्राणी से भी दब जाने साहुना मित्रम तान पण जान कन्नवी अपाणम प्रेम निश्चय दो, उन तीनों को निश्चय से आत्मा ही जानो, इसलिए तुम दर्शन ज्ञान चात्र का सेवन करो। तो कहते बस मैं तो यही करता हूँ, भगवान अम्बचंद कहते हैं भैया मैं तो यही काम करता हूँ, दूसरा कोई काम करने लायक, तो समय साल नहीं लिखा, टीका नहीं लिखी, हाँ ये भी लिखी है, लेकिन ठीक है गुरुदेव के धर्म जानवा जीवस है, किसी के लिए भी नहीं लिखी है, वो तो उन्होंने कह दिया कि कोई ये समझेगा कि तुम काय के लिए मानस करते हो, काय के लिए लिखते हो, तुमने भी मेरी परमति की परम सिद्धि हो, मतलब मेरा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, ये सिर्फ बताना है, इसके लिए ये नहीं लिखी, इसके लिए तो आत्मा का ध्यान करते हैं ना, लेकिन जगत में और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य मेरा इस वितरागी तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार दुनिया तक पहुंचे ये है, और इसमें मेरे परिणामों की भी सिद्धि होगी, क्यों कि निरंतर मैं इसका अनुभव करूंगा, उसी वही वही बात मेरे ख्याल में आएगी, मेरा इतना कमजोर चित्त है तो वो बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो इन बात अच्छा अपन जो तो आचार्य की बात है, अपन तो बहुत कमजोर भूमिका की लोग हैं। जरा विचार करो अपने जीवन में के पर के लक्ष्य से जितना अपना स्वाध्याय हो जाता है, स्व के लक्ष्य से भी उतना कभी हो पाता है न कि पर के लक्ष्य तो आत्मा का है, कभी तीन लोग तीन काल में हो नहीं सकता है। लेकिन ये जो विषय कसाय के बीच में रहने वाले ऐसे लोग हैं, उनके लिए सामूहिक स्वाध्याय, सामूहिक भजन भक्ति वगैरह ये सब इसलिए उपयोगी है कि हम सब लोग जिन्होंने 20-20 वर्ष तक शास्त्रों का स्वाध्याय मनन चिंतन किया है, तो इस सामूहिक में अगर पढ़ाने के लिए हम जितना पढ़ लेते हैं हमारा में वैसे हम पढ़ पाते हैं, सोचे ही नहीं, सोचे नहीं, सोचे नहीं। हमने 25-40 साल से कोमल साथ खोलते नहीं। अभी मान लो कि प्रथम रत्न का दादा लिखते हैं तो संपादन के नाम पहले पढ़ लेते हैं, नहीं तो वो छप जाता है, छपने के बाद ही नहीं पढ़ते, तो जब नहीं मिलता मतलब सोचो अपने क्या है। क्योंकि अनंत क्या है, अनंत का पारम किल शब्द शास्त्रम बहुवश्च विघ्ना अल्पश्च बुद्धि, अल्पश्च बुद्धि बहुवश्च विघ्ना, क्या है अनंत सा किताबें कितनी, रोज ही ना की डाक में 2-5 किताबें आ जाती हैं। मैंने पलट पलट के इतने अखबार निकलने लग गए, मैंने पलट पलट के नहीं देते अखबार आते मैंने ऐसा पलट करके देखे पढ़ते ही। लौकिक अखबार कितने निकलते हैं, जैनियों के कितने निकलने लग गए, फिर किताबें कितनी निकलने लगी, बोलिए आप पढ़ सकते हैं, आप क्या पढ़ सकते हैं, शास्त्र भी कितने कितने आ गए सामने, सब आ गए कहाँ है। तो ये तो जो अध्यापक लोग पढ़ाते हैं ही है ना, उनको तो ये है कि भैया जैसे कवि होते हैं ना, असली कवि जिन्हें अपनी कविता है, तो लोगों को चाय बड़ा बड़ा करके पिला पिला करके अपनी कविता सुनाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। तो ये कहें कि भैया तुम हमसे पढ़ लो और हमसे 200 रुपये महीना ले लो, पर तो हमसे पढ़ लो तो हम तुम्हें पढ़ाने तैयार है। उनकी महिमा हुए हमें स्वाध्याय की तो ये है, पर नहीं हुए तो हमें तनखा दो तो हम पढ़ाएं, और तनखा दो तो भी नहीं पढ़ाए तो भगवान ही मान लेगा कि क्या क्या पोजिशन है। ऐसा नहीं समझना कि जो कोई पैसे वालों का काम है, ऐसा नहीं। मेरे को तो 110 रुपया तनखा मिलती थी साहब, अशोकनगर में था, 110 रुपया महीना गुजर गए, 10 रुपये महीना किराए के मकान में चले जाती। तो मैं लड़कों को पकड़ पकड़ के लाता था, ये कबूजन जी बाबू जी थे ना, इनको और इनको लोगों को लघु सिद्धांत कौन दी, इन्हें परीक्षा मुख न्यायाधीश का ये पढ़ा था कि व्यापारी व्यापारी कहाँ पढ़े, यानी तो पालू भाई बंधु झलला माला पढ़ लें तो पढ़ लें, लेकिन मैं ये सब एक किताब में पढ़ाने की कोशिश करता था। तो वो पढ़ाने का जो रोग था समझे ना, कि कोई पढ़ ले, वहां कोई मुझसे कहता नहीं था, मैं जाकर के पाठशाला में पढ़ा करके वो 2-4 घंटे पढ़ा पढ़ा उसको भग जाता था, तो कोई मुझसे कहने वाला था कि तुमने ये क्यों नहीं पढ़ाया, कौन नहीं पढ़ाया क्या करके। लेकिन अब बाबू जी जैसे सूर्य बुद्धि को मैंने लक्ष्मण कौन दिया जैसे वो पढ़ाई क्या न्यायाधीप था, कितनी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहे, तो कमरे का अपन तो पढ़ा रहे घेर घेर के, घेर घेर के लोगों को ऐसा इससे विषय मिलता है। अपने को सौ होना अंदर होना चाहिए। सर इस नई उम्र में लोगों को पढ़ाने में आलस देखता हूँ, प्रश्न करने में आलस देखता हूँ, लिखने में आलस देखता हूँ, मैं कहता हूँ क्या कैसे लोग हैं, यानी इनको व्यसन ही नहीं आता। मैंने आप ये समझ लीजिए कि ज्ञान में जिसको आनंद आएगा समझे ना भी? अब देखिए मैंने कुंभकर्ण शतक लिखा समय सार का, तो मैं लिख लिए छंद तो दिवाली के दिन पूरे कर दिए, पढ़ता रहता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, उसको बुला के बढ़ा के पढ़ता हूँ, उसको रहने को तुम कोई पढ़े तो कोई फर्क, मैं भी पढ़ता तो हूँ ही ना, लेकिन उसमें कितना रस है उसके उसमें उसके परिमार्जन में, जिसका परिमार्जन हो जाए परिमार्जन हो जाए, मैंने उसमें कितना श्रम करते हैं, एक लिख के नकल ही नहीं करना चाहते, समाचार बनाए उसको दोबारा देखना नहीं चाहते, कैसे कैसे आलसी चीज है, इन्हें कहां ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। मैंने हमको 50-53 वर्ष हो गए, और कम से कम 17-16 वर्ष की उम्र से करते हैं इस काम को, और भी पहले से मेरी 16 वर्ष की उम्र की लिखी हुई 1000 पेज पड़े हैं, दादा को मालूम है 16-15-16-13 वर्ष में कविताएं 1000 पेज की, आज तक छपी नहीं, वे पढ़ी है अभी पढ़ रही है, उन्हें दोबारा देखने की फुर्सत नहीं है, उस वक्त भी इतनी लिख लिख के फाड़ी है और पढ़ रही है और रखी है करके पूरे, और फिर ऐसी आदत फिर पढ़ना फिर पढ़ना फिर पढ़ना उसको घोटते ही रहना, लेकिन रस ही नहीं आता लोगों, ज्ञान ज्ञान को ऐसे प्राप्त होता है किसी चीज का है? अंदर से ऐसे अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि ये तो हमारा एक व्यसन है, क्योंकि इससे हमारा उपयोग इसमें लगा रहता है, इससे हमारा चित्त मंजता है, इससे हमारा ख्याल में परमाजन होता है। अभी मुझको ये याद है कि हम सबसे पहले भोपाल में गए थे, आपको याद है दादा? भोपाल शहर में मैं 20-21 वर्ष का रहा हूंगा, तो एक उज्जैन में मील में एक मजदूरी करता था एक आदमी, नाम मैं भूल गया हूँ, वो आदमी उज्जैन के कपड़ा के मील में नौकरी करता था, बहुत छोटी, लेकिन वो समय सार नाटक समय सार के पद बहुत अच्छे गागा के बोलता था, और उसकी धार्मिक प्रवृत्ति देखकर उज्जैन में मील में जो सेठानी जो थी ना, जो भागचंद जी सोनी की बहन, क्या नाम था उनका, आपकी तसंदन होगी ना, वो तो वो उन्होंने अपने पास रख लिया था उसको, मील में नौकरी लगती थी, उसकी पूजा मूजा उनकी व्यवस्था वगैरह सब करता था। वो शिविर में आया हुआ था तो वो हमारे बगल में ठहर गया, और नाटक समय सार के पद वो बहुत गाता था, मैं वहां क्लास लेता था, पढ़ा था इधर खेड़ालाई क्लास में ली थी उस वक्त, ये बात है करीब 58 की। तो उसके वो छंद मुझे इतने अच्छे लगते थे कि मैं उसे बैठा के 3-3 घंटे सुनता था, रात के 12 बज जाते थे, फिर उसे कह रहा था कि वो मुझे आप पढ़ा देना, छड़ाला जो आप पढ़ाते हैं बता देना, मैं तुझे बता दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे छंद सुना। तो मैंने 20 दिन से 3-3 घंटे नाटक समय सार के छंद सुने उसे, फिर वो गा के सुनाता था मुझे बहुत अच्छे। पर अभी भी मेरा इसमें से इतना इतना खोटी व्यसन है कि अभी रात भर तुम पढ़ते रहो तो मेरे को ऐसे, लेकिन वो प्योर अध्यात्म कैसे होना चाहिए, नाटक समय सार जैसे संत कुंद जैसे, ऐसे जय जयनाथ परम गुरु हो जैसे नहीं होना चाहिए, अरे तेरे बीरा गया तेरा हो गया, तू बीरा बीरा मैं पुकारू, तेरा पुकारू मैं पुकारू, ये नहीं, यानी बिल्कुल शुद्ध। तो मेरे को आग नहीं पलकेगी सुबह तक, मेरा मन तृप्त नहीं होता उससे, शुद्ध विशुद्ध मतलब जो वो जो चीजें हैं, मैं तक समय सार आद्यो 5-6 दफे पढ़ दो, लेकिन मैं नहीं सकूंगा सुनने सुनते सुनने, मतलब ये जब तक उसका रस नहीं परिपाक हो, ऐसा रस परिपाक इनको हुआ इसलिए कह दिया, फिर मेरा चित्त में रम जाता है तो मुझको विषय कसानों से मेरा चित्त हट जाता है। बस ये है, कोई इससे मेरा कोई कल्याण हो जाएगा ऐसा थोड़ी है, ये तो अंदर की रुचि का परिणाम है, ये साधन नहीं है, ये फल है, ये कारण नहीं है, ये कार्य है, ये रुचि को बढ़ाने का उपाय नहीं है, बढ़ी हुई रुचि का फल है। ऐसे अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाने के लिए विद्यार्थी मिले महापुण्य का हो जाए, लोगों को तो जिंदगी में मिले ही नहीं, जो 10-20 वर्ष तक तो हम लड़ते रहे बाबू भाई से, कहते रहे उनसे, कहते रहे खोलो 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 खोलो, तो कब का काल आ गया तो खुल गई है ना। और मैंने तो पहली साल से परीक्षा मुख न्याय जीव का ये सब मैंने पढ़ा ही है, सब आपके पहले बैचों को दूसरे बैचों को ये सब चीजें बिल्कुल, अभी तो इतना जंजाल बढ़ गया है और पढ़ाने वाले भी बहुत हो गए हैं है ना, इसलिए वो मतलब कम हो गया है, लेकिन ये तो मतलब ये ऐसी चीजें हैं ना कि जिसके जीवन का के मतलब आनंद आ गया समझ लीजिए, वो सब चीजें जैसे कि वो कहते हैं कि आजीविका फाजीविका तो बिल्कुल सेकेंडरी थर्ड फोर्थ पे आना चाहिए है, और ऐसे इन विषयों के प्रति इतनी तीव्र प्रेम और लगन होने से और उसमें उपयोग की इतनी रमणता होने से उस काल में ऐसा साथी से पुण्य बंधता है ना कि ये सारी व्यवस्थाएं तो आकाश छप्पर फाड़ के होती चली जाती है, और कदाचित कोई पाप तीव्र पाप का उदय आवे किसी का और नहीं भी होवे ऐसी कोई, क्योंकि आदिनाथ जैसे को भी अंतराय आ गया वो बात अलग है कोई, तो वो बहुत रेयर केसेज हैं, शांति लाखों में एक दो ऐसे होंगे जैसे कि इतने उनके बाद में भी संकट आ गया, लेकिन बाकी तो आनंद ही आनंद, लोग की अनुकूलता की दृष्टि से बोलता हूँ। कोई ये दृवलिंगी को भी सुबह दादा बहुत बता रहे थे, कल बता रहे थे सुबह के पुण्य बंद में, तो मैं तो बहुत कहता हूँ कि मक्खनलाल जी भी स्वर्ग में जाने वाले हैं, कहा था ना बिल्कुल, क्योंकि वो तो भाव में ये तो भाव पवित्र हो गए, इसमें दाव पैंच कोरे स्वार्थ के लिए दाव पैंच नहीं हो गए, कोरी अपने मान पोषण के लिए दाव पैंच नहीं हो गए, लेकिन जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए हो गए, जिनवाणी की सुरक्षा के लिए हो गए, तो वो सब हमारे आचार्यों का जो हमारा उपयोग रहा है, तो इतना तीव्र उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधता है ये व्यवस्थाएं तो बहुत मामूली बातें हैं, इसमें कुछ दम नहीं है। एक केस दो चार केसों को नहीं, उन दिवालियों की नहीं सुनना। मैंने पहले कहा था ना कि बिजनेस करना हो तो दिवालियों की नहीं सुनना। ऐसे ये तो दस्पांती फूटी है ना यहां लगे हैं, जिनको शेरनी ने खाया, शालनी ने खाया। मच्छर तो सबको खाते हैं, लेकिन शेरनी और शालनी तो 1,00,000 मुनि में 1 मुनि को खाया होगा। क्यों? तो 1,00,000 मुनि को तो आनंद ही आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद है, और बाहर तीव्र पुण्य का उदय होता है, सारी बहुत बिल्कुल अनुकूलता रहती है, बिल्कुल स्वास्थ्य की सब बात की कोई दिक्कत नहीं। आज भी देखो आप कहाँ सब स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। हमारे तो ग्रस्त कितने बीमार रहते हैं और साधु संत कितने स्वस्थ रहते हैं, बोलो क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, ऐसा नहीं। माने जिनका कोई अंदर में समर्थन का ठिकाना नहीं है ज्ञान तत्व का, उनके भी परिणाम सब रहते हैं, तो ऐसा होता है। जिनके अंदर समर्थन ज्ञान तत्व होता है उनकी तो बात ही क्या जुदी है। ख्याल में तो ये 4-5 के फोटो क्यों लगा दिए यहाँ? इसलिए लगाए हैं ये फोटो तो कि कोई आदमी इसे हंसी खेल समझ करके और विषय भोग का साधन समझ करके इसे ना अपना ले रहे। वो विजय सागर कौन सा थे, क्या नाम था? लेकिन विजय सागर नाम मुझे लेना अच्छा नहीं लगता। लेकिन विजय सागर बहुत अच्छे साधु भी थे, अपन गए थे ना जिन्हें कुली जिनके पास गुजर गए, जो अरुण जी का हम दाढ़ी वाले होते हैं। ऐसी चिट्ठी लिखी है, ऐसी चिट्ठी ने लिखी है, ये वो क्या है, भूल ही गया क्या शुरू का शब्द क्या है। ये साधु चिट्ठी लिख रहा है किसी को, लड़की को मेरी दिल की रानी, ऐसी चिट्ठी लिखी अपने हाथ से, चिट्ठी लिखी है फोटो को भी खुद की राय लिखी। ऐसे लोगों की भी चल रही है, समाज में चल रही है। ये जो जुनवाणी है, जिनवाणी में उपयोग का रमना, ये पंचम काल में इससे ज्यादा साथी से पुण्य का कारण कोई दूसरा नहीं है। और तो धर्म तो समर्थन ज्ञान की प्राप्ति होगी तो होगा, उसका निमित्त तो जिनवाणी है ही साक्षात तो है ना, लेकिन साथी से पुण्य भी इसमें उपयोग रमेगा तो होने वाला है, क्योंकि इससे बढ़िया और कोई शुभ भाव भी इस जगत में संभव दूसरा नहीं है। इसलिए और चीजें तो बहुत सेकेंडरी है, समझे ना। इसलिए मैंने कहा जैसे एकाध बताया, एकाध का कोई पाप का उदय आ जाए, लेकिन उसमें तो लाखों के पाप ही पाप के उदय हैं, उसमें लाखों के सबके ही वैसे हैं। और इसमें और वास्तव में तो ये पुण्य पाप तक तो कहीं भरोसा नहीं रहा कि ऐसी बात हुई कि नहीं। तो इतना ये जो चित्त रमना चाहिए, ये जो वो आजीविका से धर्म के साधन टोडामल जी ने लिखा, उसका असली पॉइंट तो ये है, तेरे चित्त को रमता है और तू उसी काम में लगा है, उसी तेरी प्रमुखता है। और बाद में आजीविका तो ऐसी आजीविका तो मुनियों की भी ग्रस्त करते हैं, ब्रह्मचारियों की भी करते हैं, सबकी करते हैं ऐसी, तो उसका निषेध नहीं है। टोडा मुनि ने सब आगे व्यवस्था करे हैं और करावना लिखावना उनकी आजीविका को स्तर करना ऐसा दिया कि नहीं दिया। लेकिन वो बराबर तुम जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तुम जैसी तनख्वाह दोगे हम वैसे ही पढ़ाएंगे, ये आजीविका से धर्म के इसका निषेध है। वो बाजे वाले भी ऐसा नहीं करते हैं, बाजे वाले नहीं कि तुमने 1,000 रुपया दिए तो बढ़िया बजाए, अरे 500 दे तो खराब बजाए। वो कहते हैं हमारा तुमने कितने दे किसने देखे, तुम्हारी बारात में बजते अच्छे बाजे देखेंगे तो दूसरे वाले हमको बाधा करेंगे। मेरे वो बढ़िया ही बजाते हैं चाहे वो 500 दे बता, क्यों ऐसा होता है? ये तो हमारा ज्ञान का वितरण है, इसमें तो हम कोई कसर छोड़ने वाले है नहीं। जितनी हमारी पूरी शक्ति है लिखने में, लिखाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, आनंदित होकर ऐसे अंदर अंदर से थोड़ा मुझे उसको अपने काम करने का उत्साह बहुत है। तीशंकर और केवली जो काम करें वो हम काम करें, ऐसा सोच के उत्साह से करें तो सब पीछे अपने आप हो जाएंगे। ऐसा विकल्प करने से होता भी क्या है, क्यों ऐसा विकल्प करने से कुछ नहीं होता है। ऐसा ही निरंतर इसमें मन रमना चाहिए, चित्त रमना चाहिए, आनंद आना जाना चाहिए। तो इसमें क्या है, 10 गुना करके भी थकान नहीं आती, नहीं करे तो थकान आती है। कहे तो अच्छा करता है, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे करता रहे बस थके, आनंद 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 उसका आता रहता है ना, आता गया सत्तम अनंत चैतन्य चिन्हम। क्यों नखलु नखलु यह समाज अन्नसा साध्य सिद्धि कैसा कथमपि समुपाच्या कैसे भी करके हो तृत्वमपि एकतायाम। जैसे 3 पने को प्राप्त होने पर भी एकताया अपतित एक ताश को जिसने छोड़ा नहीं है, ऐसा आत्म ज्योति रुद्रगच्छ दत्तम, अत्यंत बढ़िया उदयीमान जो आत्म ज्योति है उसको मैं नित्य अनुभव करता हूँ। हम तो नित्य अनुभव करते हैं, वो कहते हम तो नित्य अनुभव करते हैं। क्यों? न खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये आत्मा की आराधना के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हमारी ये जिनवाणी की आराधना भी आत्मा की ही प्रकारांतर से आराधना है। ये तो आत्मा की आराधना निरंतर होती नहीं है, इसलिए जिनवाणी की होती है और आत्मा के लिए होती है। दूसरी तीसरी बात यह है कि इस काल में भी भले ही अनुभव का काल ना हो, लेकिन ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ए मैं हूँ ऐसी बुद्धि तो बनी रह सकती है। घबराना नहीं, सबको सम्मेलन हो सकता है, अभी हो सकता है, और सम्मेलन होगा तो सींग नहीं निकलेंगे। नहीं आया समझ में? क्या बिल्कुल वैसे के वैसे बने रहोगे? साथ ही फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर के सेकंड ईयर में, और वैसे सीनियर विद्यार्थी सीनियर रहेंगे, जूनियर जूनियर रहेंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अरे चलो बगल में हटो 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 लोग सम्मति आ रहे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे में सहज, बिल्कुल ऐसी सहज जिंदगी रहे हमें समझ। समझ तो त्रिकाली ध्रुव में हमें स्थापित होने की बात है ना। मैं पंडित हूँ, मैं जैन हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, सहज रहता ना। मैं पुरुष हूँ, मैं लड़का हूँ, ऐसा लगता ही नहीं रहता। मैं गुजराती हूँ, सहज रहता ना। ऐसा समझ रहे क्या था? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा महाराज आ रहा है अगल रहते, इसकी कोई जरूरत नहीं। नरक का नारी आ रहा है, नरक में कैसे रहता हूँ? हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ये जो हमने सम्मेलन का स्वरूप समझ रखा है, ये सम्मेलन का स्वरूप है ही, समझने का स्वरूप तो ये बस ये मैं हूँ, इस प्रकार में हूँ, वैसे के वैसे बिल्कुल सहज। कोई उसकी परिणति में सुधार होना चाहिए तो सप्तदर्शन छूटने का होना चाहिए, अष्टमूल गुण ध्यान करने का होना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति का भाव बढ़ना चाहिए, स्वाध्याय का प्रेम ऐसा बढ़ेगा, ऐसा नहीं बढ़ेगा कि अभिमान बढ़ना चाहिए, आडम्बर बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं बढ़ना। सम्मेलन का तो मतलब ये है कि उसके का चौथे गुणस्थान की भूमिका के लायक विशुद्ध आचरण ऐसा बढ़ना चाहिए। गुदगरी तो ये आएगा हमारे जीवन में, तो इसके आने से क्या फर्क पड़ने वाला है? इसमें कुछ हो हल्ले की जरूरत ही नहीं है। ये कोई गाजे बाजे से होने वाली शादी जैसा नहीं है। ये तो चुपचाप कोर्ट में मेरे में गए, दोनों ने कहा साइन की और हो गई, ऐसा सम्मेलन समझ ला। त्रिकाली ध्रुव को मैंने माना, ये मैं हूँ सम्मेलन हो गया, देख रहा कदम, अब चलो कॉलेज हो गया सम्मेलन, चलो हाँ अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा सम्मेलन का भ्रम हो रहा है तुझे, तुझे सम्मेलन का भ्रम हो रहा है। एक दिन तुमको सुनाया था कि नहीं सुनाया था, एक एक सम्मेलन ऋषि की कहानी कोटा की, राजकोट में भी सुना के आया हूँ, वो सुनाना चाहिए, नए नए विद्यार्थियों को भी सुनाना चाहिए कि एक बहन कोटा में कोई बहन जो है सम्मेलन हो गया, सम्मेलन हो गया तो वो युगल जी के पास पहुंची, युगल जी के पास पहुंची तो युगल जी से उसने सब कहा, युगल जी ने जो भी कुछ कहा हो उसने प्रचार शुरू कर दिया कि मुझे सम्मेलन हो गया, और युगल जी ने कन्फर्म कर दिया, ये भी प्रचार शुरू हो गया। और ज्ञानचंद जी हाँ आया, ज्ञानचंद जी ने हम लोगों से कहा कैसा ऐसा हो गया, और ऐसा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने कहा तुम ज्यादा प्रचार मत करो, चलो देखेंगे। भाग्य से कई छह महीने बाद ही हम, मैं, बाबू भाई, युगल जी, तीनों जयथल, जयथल है कोटा के पास, वहां हमने कोई वेदी प्रतिष्ठा की थी, हम उसमें पहुंचे, तीनों जने सब थे वहां से, और वो बाई भी वहीं आई, सब आई, तो जवाहरलाल जी, सुशीला बहन वगैरह सब थी, तो उन्होंने उसको बुला के हम तीनों के सामने बैठा बैठा रहा, थोड़ी बातचीत करी। मैंने युगल जी से कहा कि आपने का नाम चला कन्फर्मेशन में, उन्होंने कहा मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था कि हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन जो तुम बता रही हो जैसे विकल्प, ऐसे विकल्प सम्मेलन ऋषि के होते नहीं है, ये भी साथ कहा उनने, लेकिन इतना कह दिया कि हो गया तो ठीक है, उसको उन्होंने प्रचार कर दिया, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा दिया, तो बहुत बातें होती होती कैसा लगता है क्या होता है, तो वो तो बोले नहीं, बहन ऐसी करके नीचे थोड़ा सा घूंगा डाल के ऐसी बैठी रही, उसका पति था, अरे साहब जैसे सम्मेलन हुआ तो सब गड़बड़ हो गया है, हमारी गृहस्थी गड़बड़ हो गई है, ये हो गई है, वो बैठे बैठे रोटी बनाते बनाते एकदम आत्मा में चली जाती है, रोटी जल जाती है, हुआ कैसा था कि हाथ में लोटा लेकर के लेटन जा रही थी, हाथ में लोटा छूट गया, खड़े खड़े वही हो जाएगा सर, चक्कर बताया जो वो होते होते चुप रहे, ये तो सज्जनोत्तम थे ना, मेरे को रहा नहीं गया। तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुम्हारी गृहस्थी गड़बड़ा गई है, तो सम्मेलन से तो गृहस्थी गड़बड़ाती नहीं है और व्यवस्थित हो जाती है, भरत चक्रवर्ती को छायक सम्मा दर्शन था और उनकी गृहस्थी गड़बड़ाई नहीं थी, बिल्कुल पूरी व्यवस्थित थी। एक, एक दैनिक लायक को डिस्टर्ब कर दे वैसा थोड़ी सम्मा दर्शन है, कुछ कैंसर का सम्मा दर्शन और व्यवस्थित हो जाती थी। पूजा के समय पूजा, पाठ के समय पाठ, गृहस्थी के समय गृहस्थी, दुकान के समय दुकान, धंधा के समय धंधा, खाने के समय खाना, मतलब सब उसका एकदम व्यवस्थित हो जाता है। ये तुम्हारा अव्यवस्थित हो गया, ये कैसा? ऐसी क्या दो चार बातें और भाई, थोड़ी बाबू भाई ने भी बोले, थोड़े योगेश जी भी बोले, तो उसको बहुत गुस्सा आया संबंधित उनको। तो वो क्या बोली चुपचाप धीरे से और किसी दूसरे से बगल में औरत से, क्यों साहब कि मिथ्या दृष्टि किसी संबंध दृष्टि को पहचान सकता है? समझ रहे ना? मैंने कहा भाई बोलो युगल जी, जवाब दो, दो जवाब बाबू भाई। मैंने कहा कि देखो एक मिनट में कितना गुस्सा आ गया कि मैं तुम सब मिथ्या दृष्टि लोग मिलकर और मेरी जांच कर रहे हो, तो तुम इसलिए नहीं पहचान पा रहे हो कि तुम स्वयं सम्यक दृष्टि नहीं हो, कोई सम्यक दृष्टि ही पहचान पाएगा हमें। समझे ना? इनडायरेक्ट वे में उनने तुम्हें तीनों हमको घोषित कर दिया। तो सब लोग हम तो हंस के रह गए। फिर मैंने कहा ये बात तो सही है कि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को नहीं पहचान सकता है, लेकिन किसी सम्यक दृष्टि को किसी मिथ्या दृष्टि की सील सिक्के की जरूरत होती है? कैसा है? सील सिक्के की तुम्हें क्या जरूरत है कि हम कन्फर्म करें? तुम हरे मिथ्या दृष्टि को बताती फिर रही हो, सब मिथ्या दृष्टि है, कोई समय सी तो है ही नहीं, तो तुम सबको बताती फिर समझ होगा, समझ होगा, सील सिक्का करवाना चाहते, क्या की जरूरत है? होगा तो अब आनंद से भोगो ना। फिर उस दिन से पता नहीं कि वो सम्मत दृष्टि कहाँ गए और कहाँ है कि नहीं है, अभी स्वर्ग चले गए हैं कि जिंदा के, पता फिर पता नहीं चला। वो कहीं हो जाता थोड़ा सा बता देकर प्रसंग मिल जाती तो अभी तक दुकान चलने निकलती, कोई मधुमत मंदिर मंदिर बन जाता, मठ बन जाता, संस्था खड़ी हो जाती, पूजा पत्ता शुरू हो जाती। तो सम्मान की इसकी कोई जरूरत नहीं है, होगा हो गया। मैं देख एक एक सहज बात है, वो हो गया, उसमें क्या है? सम्मान दर्शन होना कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, बहुत सहज है, बहुत जरूरी है, आवश्यक है, बहुत हितकारी है, समझे ना? लेकिन बहुत सहज है। और जैसे मैंने कहा ना कि सम्मान दर्शन की कोई सिंह नहीं निकलते हैं, कोई सिंह नहीं निकलते हैं, ऐसी रहेगी, हमें समय समझ आएगा, जैसे हम आज वैसे कर लेना वाली, तुम्हें होगा तुम भी ऐसे थोड़ी कि तुम्हें समय समझ आएगा तो तुम गद्दी पे बैठ जाओगे, हमने बैठा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस तुम वैसे जाओगे ऐसे मारी जैसे मारी जाओगे। मैंने जो लोक में अपनी पोजिशन में जैसे चल रहा है ना, अपने हिसाब से लोक में तो लौकिक हिसाब से आप तरक्की करोगे तो ही होगी, समझे ना? आपके ना ऐसे नहीं होने वाला कोई ऐसा एकदम कोई अटपटा कुछ हो जाने वाला है। तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हम मिथुन कहते हैं सतत अनुभव, तो निरंतर अनुभव करना कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं देह में नहीं हूँ, राग में नहीं हूँ, ये में नहीं हूँ, इन सब में से एकत्व में तो बुद्धि छूट जाए, त्रिकाली ध्रुव में हो जाएगा सहज बिल्कुल एकदम। घबराने की बात नहीं, घबराने की तो कौन घबरा रहा, जरूरत भी किसको है?